ओम शांति। आज 14 तारीख 2019 शांति स्तंभ के 18 अभिलेखों में आज का है। त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच, लाडले बच्चे, इस सहज राजयोग से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। लाडले बच्चे, इस सहज राजयोग से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। मैं सहज योगी हूं। जब ये भूल जाते हैं तो क्या होता है? मैं सहज राजयोगी हूं, ये जब भूल जाते हैं तो क्या हो जाता है? भूल के भूल भुलैया में फंस जाते हैं। भूल का भी भूल भुलैया है। जैसे एक गलती अनेक गलतियों को जन्म देती है, उसी तरह एक महाभूल, एकज भूल सबसे बड़ी भूल। इस ड्रामा में एक भूल है, वो कौन सी? कि तुम बाप को भूल जाते हो। कुछ दिन पहले मुरली में था, इस ड्रामा में एक ही भूल है। क्या बाबा इस ड्रामा में भूल है? हाँ है। कौन सी? कि तुम बाप को भूल जाते हो, यही भूल है। तो बाबा कह रहे हैं, इस सहज राजयोग से बाप दादा किसको देख रहे हैं? संडे की मुरली, स्नेही बच्चों को, स्नेही बच्चों को, सहज योगी बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, प्रभु प्यारे बच्चों को और जग के प्यारे बच्चों को, परमात्मा प्यारे बच्चे को, ईश्वरीय प्यारे बच्चों को। तो जो भगवान को प्यारे है वो किसको किसको प्यारे है? भगवान को प्यारे है वो जग को प्यारे है। तो इस सहज राजयोग से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। ये सहज योग है। मनुष्य जो मानता है, जो उसकी धारणा होती है, वैसे ही चीजें होने लगती है। यदि किसी को वो कठिन माने तो वो स्वतः ही कठिन लगेगा। यदि वो सहज माने तो सहज होगा। जैसा वो मानता है वैसा। जैसे किसी प्राध्यापक ने दो कक्षाओं को बताया कि तुमको आज हम एक गणित का समीकरण, एक इक्वेशन दे रहे हैं, नौवीं कक्षा को और दसवीं कक्षा को। नौवीं कक्षा को, दसवीं कक्षा को विद्यार्थियों को उसने बताया, ये जो गणित का सम है ये इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है कि नौवीं कक्षा के बच्चे भी इसे हल कर सकते हैं, इतना आसान है। फिर वो नौवीं कक्षा के बच्चों के पास आया और उनको कहा कि ये सम इतना कठिन है, इतना कठिन है, इतना कठिन है कि ये दसवीं वाले भी नहीं कर सकते, आठवीं वाले भी नहीं कर सकते, तुम्हारे नीचे जितनी कक्षा है वो कोई भी नहीं कर सकता। नीचे का बताया, कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। और जब रिजल्ट देखा तो वो सम दसवीं वाले और नौवीं वाले, इनको कहा था बहुत मुश्किल है, इनको कहा था आसान है। तो जिनको कहा था आसान है उन्होंने सहज सॉल्व कर दिया, और जिनको कहा था मुश्किल है वो नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जब मन ये मान लेता है कि कोई चीज मुश्किल है तो वो मुश्किल हो जाती है, और जब मन पहले से ही मान लेता है कि ये सहज है तो सहज हो जाता है। जो सिद्धांत यहां पर है वही सिद्धांत विकारों के लिए है। यदि कोई मान ले कि इस विकार को जीतना संभव है तो शायद वो उसे नहीं जीत पाएगा, और यदि कोई ये मान ले कि इस विकार को जीतना अति सहज है तो उसके लिए विकारों को जीतना अति सहज हो जाएगा। कोई यदि ये मान ले कि ये जो राजयोग है बहुत मुश्किल है तो वो मुश्किल हो जाएगा, और कोई ये मान ले कि ये सहज है तो सहज हो जाएगा। हमारी मान्यताओं के अनुसार हम चलते हैं, उसी को अंग्रेजी में बिलीफ सिस्टम कहते हैं। क्या हम समझते हैं अंदर ही अंदर, जिसको कन्विक्शन कहते हैं, कि मेरी अंदर की धारणा क्या है, कितना मुझे विश्वास है उस पर, उस अनुसार हर कार्य होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये जो सहज राजयोग है, इसी से तुम्हारे जन्म जन्म के विकर्म विनाश होंगे। और इसकी निशानी क्या है कि विकर्म विनाश हो रहे हैं? हल्का और खुशी और एकर स्थिति और बुद्धि स्थिर विशाल होती जाएगी। और इसकी क्या निशानी है कि मैंने जो पाप किए हैं या मेरे ऊपर जो बोझा है अभी वो सब ठीक हो रहा है? योग अपने आप अच्छा लगने लगेगा, स्थिति एकदम ऊंची चली जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण, जो दिनचर्या में ऊपर नीचे है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, स्थिरता आएगी, हर चीज में स्थिरता, हर चीज में एकाग्रता। योग करेंगे तो संपूर्ण एकाग्रता, मुरली पढ़ेंगे तो एकाग्रता, दिनचर्या में ऐसी कोई भूले नहीं होगी कि जिसके लिए पश्चाताप करना पड़े। नहीं तो हर व्यक्ति पश्चाताप करता है, दुखी होता है कि ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। तो ऐसी बहुत सी चीजें होगी जो हमको ये बताएगी कि शायद हो सकता है कि बहुत सारे हमारे सूक्ष्म पाप विकर्म नष्ट हो रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि इसी राजयोग से ये होगा। और इसको क्या समझो? सहज समझो। कोई भी मुश्किल चीज को पहले ही सहज समझ लेना, वो अपने आप सहज हो जाएगी। कोई भी हो, कितनी भी बड़ी चीज हो, कि ये परीक्षा मेरे लिए बहुत सहज है, ये बात अत्यंत सहज है, और उस पर संपूर्ण विश्वास। जैसे एक स्कूल में, ड्राइंग स्कूल, जिसमें टीचर आती है और वो कहती है कि सब लोग ड्राइंग निकालो कुछ, तो वो देखती है एक छोटी सी बच्ची चित्र निकाल रही है और इतना तन्मयता से चित्र निकाल रही है, जो बच्ची कभी किसी विषय में इतना ध्यान नहीं देती है, पर आज चित्र निकालते समय एकाग्र है। तो वो टीचर जाकर उसको पूछती है, तुम क्या निकाल रही हो? वो कहती है, भगवान का चित्र निकाल रही हूं। तो टीचर कहती है, पर भगवान को तो किसी ने देखा ही नहीं। वो कहती है, अभी देखने लगेंगे, अभी उनको पता पड़ जाएगा कि भगवान कैसा दिखता है। कब? जब मैं निकालना पूरा करूंगी तब। उसका अपना ये विश्वास है कि मैं जो चित्र निकालूंगी वही भगवान का चित्र है। ऐसा विश्वास या ऐसा निश्चय कि हम जो करेंगे वो सत्य ही होगा, वो श्रीमत अनुसार है, इसीलिए उसमें असफलता हो ही नहीं सकती। एक अव्यक्त संदेश है 24 अक्टूबर 1991 गुलजार दादी के द्वारा, जिस दिन हॉस्पिटल का शिलान्यास हुआ उसी दिन का एक संदेश है, जिसमें बाबा ने बेफिक्र बादशाह आत्माओं का स्वागत कैसे होगा उसका वर्णन किया है। बाबा ने कहा, तुम बच्चों का, तुम बेफिक्र बादशाहों का स्वागत तीन रीति से होगा। एक फरिश्ता, पांच फरिश्ते तुम्हारा स्वागत करेंगे, पांच तत्व पांच फरिश्ते बन जाएंगे और तुम्हारा स्वागत करेंगे। दूसरा, सफलता स्वयं तुम्हारा स्वागत करेगी, सफलता स्वयं जैसे कोई व्यक्ति बनकर आएगी और माला पहनाएगी। और तीसरा, तुम्हारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप ही तुम्हारा स्वागत करेगा। जैसे उदाहरण दिया बाबा ने, दो मित्र मिलते हैं, गले लगते हैं, वैसे तुम्हारा अपना फरिश्ता स्वरूप तुम्हारे गले लगेगा। तो उसमें कहा था कि सफलता स्वयं तुम्हारा स्वागत करेगी। तो कोई भी कार्य करते समय ये भी एक सूक्ष्म विजन है कि इस कार्य में सफलता हो गई है और वो सफलता मेरा स्वागत पहले ही कर रही है, पहले ही एक सूक्ष्म विजन। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो भी सेवाएं हम करते हैं, कार्य हम करते हैं, उसमें एक सूक्ष्म निगेटिविटी जुड़ी हुई थी हुई होती है कि हमको लगता है शायद ये सफल नहीं होगा, कर तो रहे पर पता नहीं होगा तो होगा नहीं तो नहीं। सूक्ष्म आंतरिक अभ्यास ये करना है कि सफलता ही मेरा स्वागत कर रही है। इसलिए जो हम समझते हैं वैसी ही चीजें होती है, जिसको कठिन समझा वो कठिन होगा, जिसको सहज समझा वो सहज होगा। क्या हम समझते हैं उस पर सब कुछ है। तो यहां पर वही बाबा ने कहा कि जन्म जन्म के जो विकर्म हैं वो विनाश होंगे। और विकर्म किसको कहते हैं? विकर्म, पाप, कुकर्म, दुष्कर्म, जिसका परिणाम व्यर्थ है, अमर्यादित कर्म, विकारों के वश होकर, देहभान के वश होकर जो कुछ भी किया गया आज तक, सब कुछ जिसमें हमने अपने आप को आत्मा नहीं समझा और शरीर समझा, ज्ञान में आने के पहले और ज्ञान में आने के बाद तो और ही ज्यादा, वो सारे कर्म विकर्म हो गए। पाप कर्म सब मिलकर और विकर्म, ऐसा तो वही है नहीं। बाबा ने एक मुरली में कहा है, आत्मा देखना अर्थात पुण्य, शरीर देखना अर्थात पाप, देही अभिमानी अर्थात पुण्य, देह अभिमान अर्थात पाप, ऐसी परिभाषा दी है। तो राजयोग से स्वयं को योगी बनाना, क्या कहा बाबा ने, ये किसकी सभा है? योगियों की सभा है। योगियों के सभा में बाप आते परमात्मा प्यारे जो है उनकी सभा में बाप आते, परमात्मा प्यार के अधिकारी जो है उनकी सभा में बाप आते हैं। ऐसे ये योगी, सहज योगी, राजयोगी, निरंतर योगियों की ये सभा है। और जो तुमको प्राप्त है संसार में और किसी को भी प्राप्त नहीं है। संसार के में लोग प्यासे है, दो उदाहरण दिए, एक भक्त आत्मा है और दूसरे जो बचपन से क्या चाहते हैं आत्माएं, प्यार चाहते हैं, पैसा बाद में, पहला प्यार, पर प्यार मिलता नहीं उनको, स्वार्थ वाला, दुखी करने वाला। और तुमको परमात्मा प्यार प्रॉपर्टी के रूप में मिला है, तो अपने भाग्य को देखो। आज का पुरुषार्थ है ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए विशेष पुरुषार्थ। तो इसमें याद रखेंगे दो चीजें, एक तो हमारी अवधारणा, क्या हम समझते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले ये समझो कि ये अत्यंत सहज है। और दूसरी चीज, एक विजन बनाना है, सफलता मेरे गले में हार डाल रही है। कोई भी कार्य हो, कोई भी सेवा हो, कैसी भी सेवा हो, किसी आत्मा को सकाश देने की भी सेवा हो, हम यही पहले सोच ले कि हम उसे जो सकाश दे रहे हैं वो उस तक पहुंचेगी जरूर, और उसमें मुझे सफलता मिल रही है। कैसी भी सेवा हो, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों ही प्रकार से। तो आज का ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए विशेष पुरुषार्थ है, फरिश्ता जीवन बंधन मुक्त जीवन है, भल सेवा का बंधन है, लेकिन इतना फास्ट गति है जो जितना भी करे उतना करते हुए भी सदा फ्री है, जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा, सदा ही स्वतंत्रता की स्थिति का अनुभव हो, क्योंकि शरीर और कर्म के अधीन नहीं है। तो फरिश्ता जीवन अर्थात बंधन मुक्त जीवन, भल सेवा का बंधन है। ब्राह्मण आत्माओं को कुछ बड़े मीठे बंधन है, वो कौन से? कुछ कुछ बंधन है जो होने चाहिए, एक तो सेवा का जो होने चाहिए है वो बंधन, फिर भी पर वो होने चाहिए। नियम और मर्यादाओं का बंधन, नियम और मर्यादाओं का बंधन। बाबा जी ने जो नियमावली बनाई है हमारे लिए सुबह से लेकर रात तक, इस बंधन में बंध जाओ तो बाकी सारे बंधन छूट जाएंगे। तो नियमों का बंधन। तीसरा कौन सा बंधन होना चाहिए? याद का बंधन, याद की फांसी में लटके रहो। बाबा ने क्या कहा, याद की फांसी में लटके रहो, ये बंधन होना चाहिए। और विचार सागर मंथन, बंधन तो नहीं कहेंगे, बड़ा आनंदमय स्थिति है ये। ये सभी मीठे बंधन है। तो रोज विचार सागर मंथन, एक दूसरों को भोजन के समय याद दिलाओ, बाबा ने कहा उस दिन, वो भी एक। तो याद में रहकर भोजन खाना या बनाना, और शुभ भावना शुभ कामनाओं का बंधन, और दुआ देने का बंधन, और तो कुछ मीठे बंधन बाबा ने दिए। उसमें से एक हमेशा बाबा कहते हैं परमात्मा प्रेम का बंधन। ये एक ऐसा बंधन है जो तुम्हें सभी बंधनों से मुक्त कर देगा। सूक्ष्म क्या, समर्थ संकल्पों की सूक्ष्म रस्सियों का बंधन। तो अपने आप को कुछ बंधनों में ऐसे बांध देना है टाइट कि ये बंधन हमें पाप करने से रोकेंगे, जो मन को हम समझा देगी हमको करना ही नहीं है, बस ये बाहर का है, तो हम बचे रहेंगे। क्योंकि वो करके देख लिया क्या मिला, दुख ही मिला। संसार के जितने भी भोग विलास है, वो भोगने के बाद प्राप्ति क्या हुई, दुख ही हुआ। और उसमें एडिक्शन क्रिएट हो जाता है, एक लत, वो करने की। एक बार पाप किया तो वो पाप खींचते रहता है, छोड़ता नहीं है। ऐसा नहीं कि एक बार पाप कर लो और काम पूरा हुआ, वो पाप याद आते रहता है, उसकी मनसा स्मृति रहती है और वो मन में खींचते रहता है, खींचते रहता है, खींचते रहता है। तो उसका भी एक बंधन है। तो बाबा कह रहे फरिश्ता जीवन अर्थात बंधन मुक्त जीवन। तो ये तो हमने बताया वो सूक्ष्म बंधन जो होने चाहिए। यहां बाबा कह रहे हैं फरिश्ता एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें कोई बंधन नहीं है। यहां पर मीठे बंधन वाली बात नहीं चालू है, परंतु वो सारे बंधन जो हमें बांध देते हैं, किसी व्यक्ति से जोड़ देते हैं, किसी व्यक्ति से बांध देते हैं, उसमें अलौकिक संबंधों का बंधन आता है। वर्तमान समय यदि एक बड़ी माया है यज्ञ में, वो है लौकिक, अलौकिक में अलौकिकता, इन अलौकिक परिवार में लौकिकता, सारे अलौकिक है। ये संस्था एक परिवार है, पर ये कोई लौकिक परिवार नहीं है, ये अलौकिक परिवार, ये हम भूल जा रहे हैं। ये कोई वैसा परिवार नहीं है जो संसार में कैसे परिवार होता है। यहां पे पर्सनल संबंध बनाना, पर्सनल रिलेशनशिप, व्यक्तिगत संबंध बना के रखना किसी के साथ, व्यक्तिगत लेन देन होती रहेगी, कोई भी हो फिर वो बंधन है। यहां हमें प्रतिपल स्वतंत्र रहना है, क्योंकि कोई भी घड़ी हमारे लिए अंतिम घड़ी हो सकती है। अभी अभी शरीर छूट जाए तो अभी ना हो, किसकी याद में हम जाएंगे। तो मन की ऐसी तैयारी रखनी है कि अभी भी हम चले गए तो हम उसकी याद में जाए, मन को कोई रस्सियां बांधे नहीं। तो फरिश्ता जीवन कैसा जीवन है, बंधन मुक्त जीवन। इसमें दो बातें हैं, एक तो नए बंधनों को निर्माण नहीं करना, और दूसरा जो बंधन ऑलरेडी है उनको समाप्त करना। ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है, एक तो जो बंधन पहले से बंधे हुए हैं, जो हमने निर्माण किए, एक वो, उनको, उनसे छूटना है, और दूसरा अब नए बंधन नहीं बनाना है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो है पहले से उसका तो कुछ कर नहीं सकते, उसके लिए प्रयत्न चालू है निकलने का, पर वो निकलते हुए अब नए बंधन निर्माण कर देना वो खतरनाक है। अब तक के बंधन है वो ठीक है, अभी नए बंधनों में बंधना, नए व्यक्तियों से दोस्ती और नए संबंध बनाना, हाँ अगर संबंध बने वो केवल सेवा के संबंध हो बस। अगर वो व्यक्तिगत संबंध वाले बंधन है तो उसमें बंधेंगे, फिर उसमें फंसेंगे, फिर उसमें निकलने का फिर प्रयत्न करेंगे, उसमें कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। अभी ये सब करने का टाइम नहीं है हमारे पास, हमें तो चुक तू करके निकलने का समय है। तो फरिश्ता जीवन कौन सा जीवन है? बंधन मुक्त जीवन। सूक्ष्म में रोज स्वयं को देखना है, आज मैंने कोई नए बंधन तो नहीं बना दिए, जो है उसी को ढीला करते जाना है। भल सेवा का बंधन है, लेकिन इतना फास्ट गति है जो जितना भी करे उतना करते हुए भी सदा फ्री। एक चीज निरंतर, एक तो बंधन मुक्त और दूसरा स्वयं को फ्री। कितनी भी जिम्मेदारी है बाहर, पर आंतरिक फ्री है। सेवा की बाहर निकले डिटैच, कोई लेना देना नहीं। अपनी ड्यूटी की बाहर निकले फ्री, किसी से कोई संबंध नहीं। सेवा साथियों से ही संबंध बना लिए, सेवा साथियों कोई पार्टनर बना लिया, भोजन के पार्टनर अलग, घूमने के पार्टनर अलग, ये सब पार्टनर यहां बना के रख देना, बड़े बंधन है। योग के पार्टनर अलग, साथ साथ योग, साथ साथ सेवा, साथ साथ भोजन और साथ साथ घूमने, साथ साथ मुरली, ये मीठे, ये बांधने वाले बंधन है। किसके संकरण? ये बड़े भयंकर बंधन है। हमारी दिनचर्या में हम किसी पर भी निर्भर ना रहे, पहली बात। योगी जीवन स्वतंत्र निराधार जीवन है। योगी जीवन के लिए हमने किसी व्यक्ति का आधार बना रखा है तो वो हमें फंसा देगा एक दिन। ये तो आंतरिक साधना है, इसमें किसी और का क्या काम? मार्ग अकेले का है, एकांगी पगडंडी। तो जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा। पुरुषार्थ किसका करना है? पर न्यारे का कि प्यारे का? प्यारे का कोई पुरुषार्थ नहीं है, प्यारे थोड़े ज्यादा ही है। पुरुषार्थ अब करना है डिटैचमेंट का। जो जितना ज्यादा डिटैच है वो उतना स्वतः ही प्यारा है। इसके लिए मन निरंतर सब चीजों से उपराम हो, ऊपर उठा हुआ। केवल थोड़े समय के लिए आए, सेवा की काम पूरा हुआ, चले डिटैच्ड। आंतरिक एक भूख है हर आत्मा के अंदर प्रभु प्रेम की, और हर आत्मा को वो भूख अपनी खुद ही मिटानी पड़ेगी। और जब तक वो नहीं मिटाएगा तब तक उसे शांति भी नहीं मिलेगी। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं सो रहा हूं, जब मुझे भूख लगेगी उठा देना। छोटा बच्चा अपनी माँ से कहता है कि मैं अभी सोने जा रहा हूं, जब मुझे भूख लगेगी तो तुम क्या करना? मुझे उठा देना। माँ कहती है बच्चे मुझे उठाने की जरूरत नहीं, भूख स्वयं ही तुम्हें उठा देगी। सोगे और भूख लगेगी तो कोई दूसरा उठाएगा क्या? भूख ही तुम्हें उठाएगी। तो वो जो भूख है और वो जो प्यास है वो स्वयं उठाती है, पर वो होनी चाहिए प्रभु प्रेम की, और वो कोई दूसरा भर भी नहीं सकता। हमारे अंदर जो प्यास है हम स्वयं ही उसे भर सकते हैं। और हमने ये भी देख लिया कि संसार की सारी चीजें करके देख ली, कुछ भी चीज से ये प्यास मिटी नहीं। सेवाएं करके देख ली, सफलता भी मिली, पर वो प्यास अब भी है, प्यास अभी भी बची हुई है। इसलिए एक प्रश्न हमेशा आता है, क्या सेवा हमारे खुशी का आधार है? शिवानंद भाई, क्या सेवा से खुशी मिलती है, अतीन्द्रिय सुख मिलता है, पर क्या सेवा हमारी खुशी का आधार है? आधार का थोड़ा हिस्सा है। नहीं, उमंग उत्साह कहो या जो भी कहो, पर क्या वो हमारे उमंग उत्साह का आधार है? फिर हमारी स्वस्थिति स्वयंभू होनी चाहिए, स्वतः, उसमें सेवा का भी आधार नहीं होना चाहिए। हाँ, हम सेवा तो कर रहे हैं, उससे खुशी मिलती है, प्रत्यक्ष फल मिलता है, दुआएं मिलती है, सब कुछ मिलता है, पर जब सेवाएं छीन ली गई तो दुखी हो जाएंगे, तो फिर उदासी हो जाएगी। नेचर ऑफ सर्विस, सेवा का स्वरूप भी हमारी खुशी का आधार ना हो, कि इस प्रकार की सेवा मिले तो हम खुशी, इस प्रकार की सेवा ना मिले तो हम दुखी। तो सेवाओं का स्वरूप भी हमारी खुशी का आधार नहीं है, सेवा भी हमारी खुशी का आधार नहीं। हाँ, हम सेवा कर रहे हैं, लीला है, वो खेल है। बाबा ने कहा तुम बच्चों को खिलौना दिया है बाप ने, सेवा रूपी, नहीं तो खाली बैठोगे तो कुमारों को कहा ना, क्या कहा? बिजी रहो, बिजी रहना है। लौकिक में बिजी रहो, वो अलौकिक को प्रत्यक्ष करेगा। लौकिक को ही अलौकिक समझो, कुमारों से कहा बाबा ने, हिम्मत वाले हो, योगी हो। तो निरंतर ये संकल्प मन में हो कि मुझे कहीं पर भी बंधना नहीं है, कहीं पर भी, किसी में भी, किसी सेवा में भी नहीं, किसी वस्तु में भी नहीं, व्यक्ति में भी नहीं, कहीं पर भी नहीं, क्योंकि बंधन में दुख है और अभी दुखी होने का समय नहीं है। दुखी हो जाओ, फिर स्वयं को दुख से बाहर निकालो, ये सब का समय नहीं है। सदा ही स्वतंत्रता की स्थिति का अनुभव हो, क्योंकि शरीर और कर्म के अधीन नहीं है, कर्म के भी अधीन नहीं है हमारी खुशी, शरीर के भी अधीन नहीं है तो कर्म के भी अधीन नहीं है। स्वतः ही स्वतंत्रता की स्थिति हो, स्वतः ही कौन सी स्थिति हो? स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता, बंधन मुक्त, कोई बेड़िया नहीं, एक पंछी जो पिंजरे में है और एक आकाश में उड़ रहा है। पिंजरे वाले पंछी को सब कुछ मिल रहा है, भोजन समय समय पर मिलता है, उसको उसका ध्यान रखा जाता है, उसको अच्छे से वस्त्र पहनाए हुए हैं। खुश कौन है? वो जो आकाश में उड़ रहा है वो, या जो बंधन है? वो जो आकाश में उड़ रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं है आज भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर फिर भी वो खुश है। और जो बंधन में है उसको सब कुछ मिलता है, फिर भी वो दुखी है, क्योंकि दासता जैसा कोई दुख नहीं है संसार में। वो महाभारत में 5 पांडव वो द्यूत में दास बन जाते हैं, और बाद में तो छूट जाते हैं, जब वो दिखाए द्रौपदी वस्त्र वरण, उसके बाद में धृतराष्ट्र कहता है मैंने तुम्हें सब कुछ वापस दे दिया। पर ये जो बात रहती है उन 5 पांडवों के मन में इतनी गहरी चली जाती है कि दासता जैसा कोई बंधन नहीं है। और उसके बाद जितनी बार आगे अगर किसी ने उनसे कहा कि आज से हम आपके दास हैं, तो पांडवों ने कहा कि ये शब्द का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि इसके दुख को हमने झेला है, ये दुख क्या होता है हमको पता है। दास, दास अर्थात स्वतः स्वयं की कोई इच्छा नहीं, दासता बहुत बड़ा बंधन है। इसके लिए स्वयं को किसी का भी दास बनाना, विकारों का दास, व्यर्थ का दास, निगेटिव का दास, आवेश, बड़ी दुखमय स्थिति है। इसके लिए स्वयं को कभी भी सभी दासत्व से मुक्त करते रहना। तो फरिश्ता वो स्थिति है जहां कोई बंधन नहीं, फरिश्ता वो स्थिति है जहां कोई परतंत्रता नहीं, फरिश्ता वो स्थिति है जहां कोई सलाखे, बेड़िया, कोई गुलामी, कोई पिंजड़ा, कुछ भी नहीं, हम मुक्त है जिसमें। तो स्वयं को मुक्त रखना, यही पुरुषार्थ है। कुछ भी बांधे नहीं। और ब्राह्मण आत्मा को सबसे ज्यादा जो बांधता है वो है सुकर्म, अच्छे कर्म। पाप कर्म तो छोड़ दिए, परंतु जो अच्छे कर्म है वो भी बांधते हैं। किस रीति से? अच्छे कर्म, किसी ने सेवा की या कुछ भी अच्छा कर्म किया, अच्छा भाषण ही दे दिया किसी ने जैसे, वो भी बंधन हो सकता है। वाचा की सेवा की वो भी बंधन हो सकता है। कैसे? क्योंकि उसमें मन जो महिमा प्राप्त होती है उसको स्वीकार कर लेता है और उसको लगता है ये मेरी हो रही है। वो ऊपर का जो है, जिसके कराया, जिसने कराया, करण करावन हार स्वामी, वो भूल जाता है कि तो क्या अच्छे कर्म भी ना करे। क्योंकि सन्यासियों ने यही देखा कि अच्छे कर्म करो तो भी बंधन में बनता है व्यक्ति, और बुरे कर्म तो बनता ही है। उन्होंने कहा दोनों को छोड़ो, ये झंझट में जाना ही नहीं है, कर्म ही नहीं करो, चुपचाप अकेले एकांत में चले जाओ, इस संसार से दूर जहां कोई कर्म नहीं है, एकांत में अपनी साधना करते रहो। आज विदेशियों के साथ मिल रहे थे तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि ये जो भक्त लोग थे और ये जो सन्यासी लोग थे, इनकी साधना इतनी इंटेंस, इतनी तीव्र थी, और हम लोग इधर ब्राह्मण बैठे, हमारी साधना उतनी तीव्र क्यों नहीं है? परमात्मा प्रेम पर मुरली थी तो उनका प्यार हमसे क्या ज्यादा है? उनका प्यार, जो भक्त हुए संसार में द्वापर से अब तक, वो सब कुछ छोड़कर, लोक लाज सब छोड़ के मीरा, ये सब इतने मगन थे प्रभु प्रेम में, और हम जिसको भगवान मिला है हम इतने मगन क्यों नहीं है? ऐसा प्रश्न पूछा तो क्या कहेंगे? हाँ, तो हमको भी तो वैराग्य है, मिक्स्ड। नहीं, वो जो द्वापर से सारे जो हुए, उसमें दो तीन बातें हैं। उनको चाह थी पाने की, उनको मिला नहीं है, इसलिए वो तीव्रता बहुत ज्यादा है। एक तो ये कारण है, दूसरा उनको तीन सब्जेक्ट है, हमको चार सब्जेक्ट है। हमारे पास, उनके पास ज्ञान उनके हिसाब से, जो जिसको वो ज्ञान कहते हैं, फिर योग जिसको वो योग कहते हैं, और उनकी धारणा है। बस हमारे पास ज्ञान है, योग है और धारणा है, पर एक चौथा ऐसा सब्जेक्ट हमारे पास है कि वो करते करते ही सारा कुछ डाइल्यूट हो जाता है, ऐसा लगता है कभी कभी। पर बाबा ने उसके अलग अर्थ बताए, वो दूसरी बात है। पर सोचो, जैसे दादी प्रकाशमणि ने कभी एक साल के लिए कहा था सभी मधुबन वालों को कि कोई सेवा नहीं, केवल तपस्या। ऐसा हुआ है कभी यज्ञ के इतिहास में, तपस्या वर्ष में शायद, कुछ नहीं करना है, बाकी सब दूसरे करेंगे। मधुबन वाले केवल और केवल तपस्या करेंगे एक मास तक, ऐसा यज्ञ के इतिहास में कभी हुआ है, केवल सेवा। तो कभी कभी वो जो सेवा है वो भी क्या बन जाती है? बंधन बन जाता है। इसलिए तो सेवा करना और सेवा के बंधन से मुक्त हो जाना, सेवा करना परंतु बंधना नहीं, सबसे मुख्य बात सभी सेवाधारियों के लिए, यज्ञ के सभी सेवाधारी, हम सभी सेवाधारी है, सेवा की और बंधन में फंसना नहीं। नहीं तो सुकर्म भी बंधन बन जाता है, अच्छे कर्म भी बंधन बन जाते हैं, सेवा भी बहुत बड़ा विशाल बंधन बन जाता है। सेवा की और मुक्त रहे, ये फरिश्ता स्थिति है। हरेक को ये देखना है कि सेवा करते हुए मुझे क्या क्या बंधन आते हैं। व्यक्तियों के संपर्क में आए, कोई व्यक्ति ज्यादा अच्छा लगता है, कोई बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसके साथ सेवा करना ज्यादा अच्छा लगता है, उसके साथ ऐसा लगता है इससे, इसके साथ सेवा ना करो तो बहुत अच्छा, इसके ऐसा लगता है यहां से ये चला जाए उसके बाद अच्छी सेवा होगी। लाइक्स डिसलाइक्स, ये बंधन बन जाते हैं। सेवा में अनासक्त रहना, इसके लिए क्या किया जाए? सेवा में कोई बंधन ही ना बने, इसके लिए क्या किया जाए? क्योंकि अमृत वेला ठीक है, मुरली ठीक है, नौवां शाम का योग ठीक है, रात्रि का समय ठीक है, दिनचर्या जो है वो दिनचर्या में यदि बंधन निर्माण हो गए तो शाम का समय और दूसरे दिन का सुबह का समय उसमें हलचल होगी। तो क्या ऐसी धारणाएं हो कि जिसमें दिनचर्या में कोई बंधन ही ना बंधे, क्या करें सेवाओं में? सुबह शाम के समय दिनचर्या को ठीक करना, दिनचर्या की तैयारी सुबह और शाम, ये एक बहुत अच्छा अभ्यास है कि सुबह का समय, शाम का समय और जो बीच का समय है, सारी हलचल बीच में है, सुबह शाम नहीं है। तो पहले तो सुबह को ठीक करो, सुबह ठीक हो गया शाम को ठीक करो, जब दोनों ठीक हो गए तो दोनों मिलकर ये इसको ठीक करने का अभ्यास, इसको सकाश, तो इसमें कोई बंधन ना बंधे। इसलिए दोनों समय हमारे बड़े पावरफुल होने चाहिए, सुबह का और शाम का। जो महत्व अमृत वेला योग को है वही महत्व नुमा शाम के योग को भी है। ये पीरियड जो है नुमा शाम का, उसमें योग के अतिरिक्त और एक काम करना है, शाम के योग के समय बाबा को अपना चार्ट देना, दो बार चार्ट देना, एक रात को सोते समय और एक नुमा शाम के योग की शुरुआत के पहले। किसका चार्ट? दिनचर्या का चार्ट, कि आज ये हुआ, किस किस से झगड़ा हुआ, किस किस से अनबन हुई, किस किस ने क्या कहा और हमने कौन सी चीजें आवेश में की। सबसे ज्यादा सुरक्षित रहने का मार्ग कौन सा है दिनचर्या में? नहीं, एक ऐसा मंत्र है कि जो सुरक्षित रहने का मार्ग है। सारी लड़ाई का कारण क्या है दिनचर्या में? मैं, अहंकार। तो एक लक्ष्य रखना है कि सारी दिनचर्या में मुझे नंबर वन निरहंकारी रहकर चलना है। सारी दिनचर्या में क्या बनकर चलना है? सबसे छोटा, मेरे से सभी बहुत ही बड़े हैं, मेरे से सभी महान है, मेरे से सभी ज्यादा योग्य है और मुझे सभी से सीखना है, नहीं तो मेरे अंदर का जो मैं है वो सारे झगड़ों की बीज जड़ तो वो मैं है। तो सारी दिनचर्या में या कर्म क्षेत्र में या कर्म स्थान में एक लक्ष्य रखेंगे, कौन सा? कि मुझे सर्टिफिकेट किसमें लेना है? आज दिनचर्या में 6 घंटे काम करने हैं, ठीक है, तो 6 घंटे में मुझे निरंकारी रहकर चलना है। बस ये 6 घंटे जीतने दो, किसी को जीतना है तो कोई जीत जाए ना अच्छा ही है, दूसरों को लगे कि ये मूर्ख है। दूसरों को लगे कि इसको कुछ भी नहीं आता है, हम हार मान ले बस। जैसे पांडव जो थे 1 साल अज्ञातवास में थे, पांडवों का दिखाया महाभारत में, 1 साल कहां थे? अज्ञातवास में। वो सम्राट युधिष्ठिर क्या बनकर रहा? गुलाम बनकर रहा। वो मत्स्य नरेश कई बार उसका अपमान किया, पर वो उनकी साधना थी। तो ऐसा समझना हम किसमें हैं अभी? अज्ञातवास में है। अज्ञातवास अर्थात लाइमलाइट नहीं, अज्ञातवास अर्थात छिपे हुए, क्योंकि दुर्योधन के गुप्तचर उधर खोज कर रहे हैं, क्योंकि अगर मिल गए तो अगले 12 साल फिर संन्यास, फिर से आगे और अवधि बढ़ जाएगी। वो धनुर्धर अर्जुन दिखाया है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, वो क्या बन के है वहां पर? बृहन्नला। वो बृहन्नला बनकर है जो कि नपुंसक है, नपुंसक अर्थात न स्त्री न पुरुष। उसे स्त्री का कोई आकर्षण नहीं, ना पुरुष का कोई आकर्षण, ये अज्ञातवास है। अज्ञातवास अर्थात अर्जुन जो इतना श्रेष्ठ है परंतु ऐसे रह रहा है जैसे कि न स्त्री है न पुरुष है, वो जो कन्या होती है उत्तरा, उसको वो सिखा रहा है, नृत्य सिखा रहा है, गायन सिखा रहा है। क्यों? अपने आप को छिपा रहा है वो, अपनी कलाओं को छिपाया है। अगर क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न पांडवों के सामने ये था, इतने श्रेष्ठ पांडव छिप कैसे सकेंगे, क्योंकि उन ये तो एक एक तेजस्वी है, इनको छिपना महा सबसे ज्यादा मुश्किल कार्य है, क्योंकि वो तो ढूंढ ही लेंगे। वैसे भी दुर्योधन ढूंढ रहा है कि ये मिल जाए अज्ञातवास में तो अगले 12 वर्ष फिर से इनको संन्यास दिया जाए। छिपा लेना स्वयं, अपने अहंकार को नीचा कर देना। सो सारे दिन भर किस में रहेंगे? अज्ञातवास में रहेंगे। ये सेफ्टी का साधन है, क्योंकि सारी लड़ाई का कारण एक ही है, मैं राइट हूं, मुझे ये आता है। जीतने दो स्वयं को, दूसरों को क्या होता है देखेंगे। दूसरा जीत जाए तो क्या होता है? तो जब ऐसी दिनचर्या होगी ना, फिर बंधन नहीं बंधेगा। क्योंकि आज तक हम अपने आप को देखे तो जितनी बार हमारी लड़ाई हुई है, हम डिस्टर्ब हुए, क्या कारण रहा है? मैं के कारण ही रहा है। नियम तो हम भी चल रहे, वो भी चल रहे, मर्यादाओं पर हम भी है, वो भी है, फिर भी लड़ाई हो रही है, फिर भी अहंकार अहंकार से टकरा रहा है। जैसे कोई एक बहन सेवा केंद्र पर है और कोई एक भाई सेवा केंद्र पर है, या कोई मधुबन में है, या किसी भी यज्ञ के स्थान पर है, या कोई ऑफिस में है, ऑफिस में काम करता है, अहंकार टकराता है। जैसे एक बॉस है, वो सोचता है मेरे पास दो व्यक्ति काम करते हैं, मुझे इन दोनों में से किसी की एक की तनख्वाह बढ़ानी है। ये ज्ञानामृत में आया था कभी, तो वो सोचता है मैं इनकी परीक्षा लेता हूं। पहले को बुलाता है और बहुत उसको गालियां देता है, कुछ कुछ कहता है, वो सब कुछ सहन कर लेता है। दूसरे को बुलाता है, दूसरे को भी ऐसा ही कुछ कुछ कहता है, वो बिल्कुल सहन नहीं कर पाता। तो बॉस ये सोचता है कि जो पहला था ना वो योग्य है, क्योंकि उसमें क्या है? सहनशीलता है। तो जहां अहंकार बहुत अधिक होता है वो सहन नहीं कर पाता। इसके लिए सारे दिनचर्या में अज्ञातवासी भव, अज्ञातवास में है। अज्ञातवास में वो भीम जो है वो वल्लभ नाम का वो रसोईया बनकर काम कर रहा है, वो सब कुछ छोड़कर। वो जो नकुल और सहदेव जो तलवार चलाने वाले, वो तलवार नहीं चला रहे, घुड़सवार, वो घुड़सवार अश्वशाला में है, खाली देखभाल कर रहे। वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, इतनी उनमें पावर थी, परंतु अपनी कलाओं को छिपाए हुए है, अपने आप को बिल्कुल छिपा के चल रहे। वो जो पटरानी है जिसकी हजारों दासियां है, वो खुद एक दासी के रूप धारण करके सेवा कर रही है। तो ये सब क्या है? ये किसका यादगार है? अज्ञातवास हमारा यादगार है। बाबा ने कहा तुम वनवाह में हो, ये अज्ञातवास भी हमारा ही यादगार है। तो यहां मैं जो है उसको थोड़ा सा क्या करना है? नीचे करना है। ऐसी जब दिनचर्या होगी, और ऐसा मन को समझाना, 6 ही तो घंटे हैं, 8 ही तो घंटे हैं बस, उसके बाद मन को समझाना, क्योंकि मन इतना जल्दी मानेगा नहीं। वो 24 घंटा निरंकारी रहने को मानता नहीं है, उसको कहना है कि 4 घंटे अज्ञातवास में रहना है तुमको। आज कोई मीटिंग है ना, तो मीटिंग में अज्ञातवास समझो कि इसमें अज्ञातवास का समय है। 6 घंटा ड्यूटी का समय, अज्ञातवास का समय है। 6 घंटा कहीं पर रहना है सेंटर में, 8 घंटा रहना, ये 8 घंटा बस अज्ञातवास में रहेंगे, बाकी तो फिर लड़ाई करते रहेंगे रात में।
एक दिन तो नहीं है, हर रोज ऐसे
हर रोज टाइम बदलना। पर एक दिन का जो फायदा मिलेगा वो फायदा खींचेगा अगले दिन, क्योंकि ये जो एक दिन 6 घंटा रोज लड़ाई होती है, ड्यूटी में गए और लड़ाई, ड्यूटी में गए और लड़ाई, और तो एक दिन हमने ऐसा किया अज्ञातवास में रहे तो पाया कि लड़ाई हुई नहीं, तो अच्छा हो गया ना, फायदा हुआ। तो वो फायदा फिर दूसरे दिन और खींचेगा, तो ऐसा हो जाएगा फिर। तो कर्म करना परंतु बंधन नहीं। बंधना ही नहीं, बस गए जैसे कोरे कोरे गए वैसे कोरे कोरे बाहर आना है, चिपका हुआ नहीं हो, कुछ भी चिपका हुआ ना हो, गए सेवा की और निकलकर बाहर आ गए बस। जैसे कोई कुमार उदाहरण कहीं जाता है छह मास के लिए किसी सेंटर पर, या कोई उसका काम है, ड्यूटी है, कोई सेवा है, और छह मास किसी सेवा केंद्र के संपर्क में रहता है, छह मास सेवा की या अपना ड्यूटी की और वापस आ गया। एक दूसरा कुमार जा रहा है और वो भी छह मास रहता है, पर वो वहां इन्वॉल्व हो गया लोगों से। अब जब निकल के भी आएगा तो उनकी यादें रहेगी, निकल के भी आएगा तो उनसे संपर्क रहेगा, कांटेक्ट रहेगा, और गहरा कांटेक्ट रहेगा, और वो बंधन बन जाएगा उसके लिए। तो कौन सा अच्छा है, पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला, गया चुपचाप चुपचाप सेवा की और निकल के आ गए, पर जहां बंधन बन गए। पर दूसरी और एक बात है इसमें, जिसका जिस आत्मा के साथ हिसाब है उसको तो आप रोक ही नहीं सकते, वो तो बनाना ही है, वो घसीटते हुए वो हिसाब किताब उसको ले जाएगा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। अब कितना भी समझाओ किसी को वो नहीं मानेगा, क्योंकि यदि उन दो व्यक्तियों का हिसाब है तो वो घसीटते हुए हिसाब किताब उनको लेके जाएगा, मर्यादाएं तोड़ने को मजबूर करेगा दोनों को भी, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए साक्षी देखते रहना, जितना समझा सको समझा दिया, बस छोड़ दिया, क्योंकि आप हर एक चीज यहां ठीक नहीं कर सकते, हर एक को ठीक करना हमारा काम नहीं। बाबा ने कहा ठेकेदार तुम हो या मैं, तुमको किसने बोला ठीक करने को, किसको? अपना काम आप खुद करो, जो तुम्हारा काम है वही करो, दूसरों का काम करना तुम्हारा काम नहीं। मददगार तो है, पर इस बात में मुझे उससे पहले भी उदाहरण दिया था जगदीश भाई ने, रात में चोर आया और कुत्ता सोया हुआ था, गधे को लगा मुझे कुछ करना चाहिए और गधा चिल्लाने लगा, मकान मालिक आया और गधे की पिटाई की, जेने काम तेने करे, बीजू करे तो धोखा डंडा खाए, जो जिसका काम है वो उसने करना चाहिए। तो सार है फरिश्ता अर्थात बंधन मुक्त, फरिश्ता अर्थात स्वतंत्र, फरिश्ता अर्थात कहीं पर भी फंसना नहीं, किसी में भी फंसना नहीं, फरिश्ता अर्थात मैं को नीचे कर देना, एकदम ही छोटा कर देना उसको, क्योंकि सारा उपद्रव मैं करता है। और फिर से स्टडी करना है, पांडव अज्ञातवास में कैसे रहे, छिपा कर खुद को, जितना जो स्वयं को छिपाएगा उतना अच्छा है, वो अलग बात है छिप नहीं सकते वो दूसरी बात है, परंतु लक्ष्य यही रखना है कि मैं को छिपा के रखना है, छद्म वेश धारण कर अंदर ही अंदर तपस्या चालू रहे। क्योंकि जड़े जो है पेड़ की वो कहां रहती है, जमीन में। अगर जड़े कहे कि जैसे पेड़ की सब तारीफ करते हैं, फूलों की तारीफ करते हैं, फलों की तारीफ करते हैं, हमारी क्यों नहीं तारीफ होती है, हम भी बाहर निकलते हैं तो जड़ें बाहर निकलेंगी तो लोग क्या करेंगे, जड़ों को काट के ले जाएंगे। इसके लिए जड़ों की शोभा किसमें है, गुप्त रहने में। जड़ों की शोभा किसमें रहे, नीचे रहने में। इसके लिए जड़ों को गुप्त ही रहना ठीक है, हम भी गुप्त पांडव है, ये हमारा अज्ञातवास चालू है, माया के गुप्तचर ढूंढने में लगे है, मिल जाए तो पकड़ लेंगे। इसके लिए स्वयं को छिपा देना। अच्छा, ओम शांति।